Jesus Christ came to earth not only to die for our sins.
Yeshu Masih is dharti par sirf isliye nahi aaye ki hamare paapon ke liye wo mare jaye.
That is the most well known reason that Christians know why he came.
Aur masiyon mein ye sabhi jante hain ki masih yeshu is duniya mein kyun aaye.
But if we only think of that, we are going to live a very shallow Christian life.
पर यदि हम सिर्फ इतना ही सोचे कि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि मेरे पापों के लिए जान दे, तो हम एक बहुत कम गहरा ऐसा मसीह जीवन जिएंगे।
There was another reason why he came.
और एक कारण था जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे।
And that we can understand from the words that he spoke often to his disciples.
और ये कारण जो हमें जानना चाहिए उस वचनों से पता चलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बार बार कहे थे।
He used to say to people, "Follow me."
वो लोगों से कहता, तुम मेरा पीछा करो.
And thereby he was saying that his life was an example for us to follow.
और ऐसा कहकर प्रभु हमसे कह रहा था कि मेरा जीवन एक उदाहरण है जिसका तुम अनुसरण कर सकते हो.
From the time of Adam right up until Jesus.
आदम से प्रभु यीशु मसीह तक.
There was no servant of God who ever said, "Follow me."
एक भी ऐसा परमेश्वर का सेवक नहीं था जिसने कहा हो कि तुम मेरा पीछा करो.
There were great prophets in the Old Testament who proclaimed the truth of God.
जूने करार में ऐसे काफी महान भविष्यवक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया.
But nobody could say, "Follow me."
पर कोई ये कह नहीं सका कि तुम मेरा पीछा करो.
But Jesus established a new covenant.
पर प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा बांधी.
And he began using these words, "Follow me."
और वो इस शब्द का उपयोग करने लगा, तुम मेरा पीछा करो.
And it did not end with him.
और ये जो वाचा थी, उसके साथ खत्म नहीं हुई.
We have been thinking in these days about living on earth in such a way that we have no regret in eternity.
हम इन दिनों में इस बात पर मनन कर रहे थे कि हम दुनिया में एक ऐसा जीवन जिए ताकि जब हम अनंत काल के लिए जीने जाए तो हमें इस जीवन के बारे में दुख ना हो.
And if we listen to the word of Jesus to follow him.
और यदि आज हम सुनते हैं प्रभु यीशु के वचन को जो कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ.
And study his earthly life.
और अगर हम उसके दुनिया में बिताए गए जीवन का अभ्यास करते हैं.
That was the most perfect life that ever lived on this earth.
इस दुनिया में यदि किसने एक सिद्ध या पूरा जीवन जिया हो तो वो प्रभु यीशु मसीह था.
And anyone who lives in that way will certainly have no regret in eternity.
और यदि कोई व्यक्ति उस जैसा जीवन जिए तो वास्तविकता में अनंत काल में उसे कोई दुख ना होगा.
Jesus was not rich.
यीशु मसीह एक अमीर आदमी नहीं था.
He was not famous.
वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था.
He was despised and rejected by men in his day.
उनके दिनों में लोगों ने उनको धिक्कारा था, उनके नामों को बदनाम किया था.
They called him the prince of devils.
यीशु मसीह को लोगों ने शैतान का राजकुमार या राजा कहा था.
They said he was possessed by a demon.
लोगों ने कहा था कि तुम शैतान से भरे हुए हो.
They called him a false teacher.
लोगों ने कहा था कि तुम झूठे शिक्षक हो.
We know they persecuted and killed him.
और यहां तक कि उनकी कोशिश की कि उनका पीछा करे, हत्या और उनकी हत्या कर दे.
But that is the life that will have no regret in eternity.
पर ऐसा वो जीवन है जिसका हमें अनंत काल में कभी दुख ना होगा.
I don't mean to say we have to do all the things that Jesus did.
मैं आपसे ये नहीं कहता कि हम सारी वस्तुएं या सारी वो चीजें करें जो प्रभु यीशु मसीह ने की.
We don't have to walk on the water and feed the 5,000.
आपको पानी पर चलने की जरूरत नहीं या 5,000 लोगों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं.
But we need to understand the principles by which Jesus lived his life.
पर हमें वो सिद्धांत जानना जरूरी है जिस सिद्धांतों से प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन इस धरती पर बिताया.
And if we understand those principles and live our life according to those principles.
और अगर हम उन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन को उन सिद्धांतों के हिसाब से जीते हैं.
Then we would have lived the most worthwhile life on this earth.
तो हमारा जीवन जो इस दुनिया में हम जिएंगे वो काम का होगा.
So as I said, Jesus did not come just to die for our sins.
तो जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हमारे पापों के लिए सिर्फ मरने के लिए नहीं आए.
He came to give you and me an example of how to live on this earth.
पर वो इस दुनिया में इसलिए आया कि आपको और मुझे एक उदाहरण दे कि हम इस दुनिया में कैसा जीवन जिए.
So the first thing that we need to settle in our mind is this.
पहली चीज जो हमारे मनों में बैठ जानी चाहिए वो ये है,
इज इट पॉसिबल टू फॉलो द अर्थली लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट?
क्या ये संभव है, क्या हो सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन इस दुनिया में जी सकूं?
Jesus was not the only person who said follow me.
यीशु ही एक अकेले वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा कि तुम मेरा पीछा करो.
The apostle Paul said in 1 Corinthians 11.
संत पौलुस पहली कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में कहता है,
follow me.
मेरा पीछा करो.
As I follow Christ.
जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूं.
Jesus is called the forerunner.
यीशु मसीह को बाइबल में आगे दौड़ने वाला कहा गया है.
He's the one who's run in front of us.
वो जो हमारे सभी के आगे दौड़ रहा है.
And in Hebrews 12 we are told to look to him and run the race.
और इब्रानियों के 12वें अध्याय में ये कहा गया है कि हम उसकी ओर नजर करें और अपनी दौड़ को दौड़ें.
So a forerunner means he ran on the same track that we are to run.
और आगे दौड़ने वाला जो प्रभु यीशु को कहा गया इसका मतलब कि वो उसी रास्ते पर दौड़कर आगे गया है जिस रास्ते पर हमें दौड़ना है.
Paul followed him.
पौलुस ने उसका पीछा किया.
And so he could say follow me because I am following the forerunner.
और इसलिए पौलुस कह सका कि तुम मेरा पीछा करो क्योंकि मैं उसका पीछा करता हूं.
And it is the will of God that every one of us go on that same track and say to others behind us follow me as I am following Christ.
और ये प्रभु की इच्छा है कि हम भी उसी रास्ते पे दौड़े और हमारे पीछे वालों से कहे कि तुम मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं.
But many Christians are so ignorant of the scriptures.
पर ज्यादातर मसीही वचनों को ध्यान नहीं देते हैं.
That when a preacher gets up and says don't look at me, don't follow me, but follow Christ.
कि जब एक प्रचारक उठकर खड़ा होता और कहता कि तुम मुझे मत देखो पर मसीह को देखो.
And don't follow my example, follow Christ's example.
तुम मेरे उदाहरण का अनुकरण मत करो पर मसीह के उदाहरण का अनुकरण करो.
We think what a humble man.
तो हम सोचते हैं ये व्यक्ति कितना नम्र है.
That's because we don't know the scriptures.
ये इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हम वचन नहीं जानते हैं.
A true servant of God will never say don't follow me.
परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे जैसा मत करो.
Such a man is a hypocrite.
अगर वो व्यक्ति ऐसा कहता है तो वो व्यक्ति पाखंडी है.
Such a man is one who has to say listen to my preaching but don't come home and see how I live with my wife.
वो व्यक्ति कहता है कि तुम मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो सुनो वैसा करो पर मेरे घर आके मत देखना कि मैं अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करता हूं.
Such a man should shut his mouth and stop preaching.
ऐसे आदमी को प्रचार नहीं करना चाहिए और अपना मुंह बंद कर देना चाहिए.
The only man who has the right to preach God's word is the one who says follow me.
एक वो आदमी जो कहता है कि तुम मेरा पीछा करो सिर्फ उसके पास अधिकार है कि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे.
Follow me as I follow Christ.
मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं.
Come and live with me in my home and see 24 hours how I live with my wife and my children.
तुम आओ और मेरे घर में रहकर देखो कि मैं अपने बीवी के साथ कैसा बर्ताव करता हूं, मेरे बच्चों के साथ मेरा जीवन कैसा है.
See how I have brought up my children.
देखो मैंने अपने बच्चों को कैसा बड़ा किया है.
See the values with which I run my home.
देखो किस प्रकार किस सिद्धांतों से मैं अपने घर को चलाता हूं.
Come to my home and see the television programs we watch in our home.
आके मेरे घर में देखो कि मैं टीवी पर कौन से कार्यक्रम देखता हूँ.
See the books we read.
आकर देखो कि हमारे घर में कौन सी किताबें हैं.
Look at my financial books and papers and see how I handle money.
आके देखो कि मैं अपने जीवन में पैसे को कैसे संभालता हूँ, मेरे उस हिसाब किताब देख लो.
See how I work, treat my coworkers in my church.
कैसे मैं काम करता हूँ. तुम आके देखो कि मैं मेरे साथ काम करने वालों के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ.
You can come and examine every area of my life.
वो प्रचार कह सकता है कि तुम आओ और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को तुम जान सकते हो.
I have nothing to hide.
मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुमसे छुपाऊं.
Follow me as I follow Christ.
मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूँ.
My brothers and sisters, that is the only type of man who has the right to stand up and preach in the name of Jesus Christ.
मेरे भाइयों बहनों केवल वो एक व्यक्ति होगा जो कह सके कि मेरा पीछा करो वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकता है.
And it is because we don't have such people that Christianity has come to such a pathetic level today.
और क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं हैं, मसीहता आज इतने नीचे स्तर पर आ गई है.
In the new covenant, we don't just tell people to come and hear God's word.
नए करार में हम सिर्फ लोगों से नहीं कहते कि तब आइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए.
That was old covenant.
ये जूना करार था.
Come and hear. Moses has come down from the mountain.
Musa, पहाड़ी से नीचे उतर के आया. उसने कहा, आओ और परमेश्वर के वचन को सुनो.
He has heard from God. Let's hear what God has to tell us.
लोगों ने कहा कि पर मूसा ने जाके परमेश्वर से सुना है. आओ हम सुने कि मूसा क्या कहना चाहता है.
Come and hear. Come and hear.
वो कहता था, आओ और सुनो, आओ और सुनो.
Come and hear Isaiah. He has come to preach.
सुनो सुनो, Isaiah प्रचार करने आया है. वो परमेश्वर की बातें कहता है.
But in the New Testament, it's different.
पर नए करार में यह अलग है.
The disciples of two disciples of John the Baptist once went to Jesus.
यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाले के दो शिष्य एक समय यीशु के पास जाते हैं.
John chapter 1.
यूहन्ना का पहला अध्याय.
And said, Master, where do you live?
और वो कहने लगे, स्वामी आप कहाँ रहते हो?
You know what he said?
आपको पता है उसने क्या कहा?
Come and see.
उसने कहा, आओ और तुम जान लोगे.
Come and see where I live.
आओ और देखो कि मैं कहाँ रहता हूँ.
This is the new covenant message.
ये नए करार का संदेश है.
People go to Jesus today.
आज जब लोग यीशु के पास जाते हैं,
Lord, where are you living today?
प्रभु आज आप कहाँ रहते हो?
Come to that disciple's house. Come and see how he lives.
उस शिष्य के घर में जाके देखो मैं कहाँ रहता हूँ.
Come to that person's church. Come and see how I am glorified there.
वो व्यक्ति के कलीसिया में जाके देखो कैसे मेरी महिमा उस कलीसिया में होती है.
A church that cannot say come and see.
वो कलीसिया जो नहीं कह सकती कि तुम आकर देखो.
A Christian family that cannot say come to my house and see how we live 24 hours a day.
वो मसीह परिवार जो ये नहीं कह सकता कि तुम 24 घंटे में कभी भी आकर देखो हमारे घर में.
These are the people who bring dishonor to the name of Jesus Christ.
वो लोग होते हैं जो मसीह के नाम पर अनादर लेकर आते हैं.
And that is because Christians who are gripped by the truth that Christ died for their sins have not been gripped by the second truth that he gave us an example how to live.
और ये बात इसलिए है क्योंकि मसीहों के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आके उनके पापों के लिए मरे, पर ये बात उन्हें नहीं पता है कि यीशु इसलिए भी आया कि उनके सामने एक उदाहरण का जीवन रखे.
So when we look at the life of Jesus,
तो जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं,
the first question that we need to recognize is it possible for a human being like you and me to live like he lived?
तो पहला प्रश्न जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये है, क्या मेरे लिए संभव है या क्या हो सकता है कि मैं उसके जैसा जीवन जी सकूं?
Most Christians immediately rule out that possibility and say it is impossible.
अधिकतर मसीह कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता, हम यीशु के जैसा नहीं जी सकते.
And as soon as you say that, I guarantee it will be impossible for you.
और जैसे ही वो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ऐसा जीवन कभी नहीं जी पाओगे.
In 100 years you will not be able to live.
100 वर्षों में आप कभी यीशु जैसा जीवन नहीं जी पाओगे.
Not because it is not possible, but it is because you don't believe.
इसलिए नहीं क्योंकि ये हो नहीं सकता है, पर इसलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो.
Because everything in the Christian life is according to your faith.
क्योंकि मसीह जीवन में सारी बातें आपके विश्वास अनुसार है.
Now we cannot imagine that we can walk as he walked unless the Bible tells us to do so.
हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम यीशु मसीह जैसा चलें जब तक हम नहीं पढ़े कि बाइबल हमसे क्या कहती है.
What does the Bible say?
बाइबल क्या कहती है?
1 John chapter 2.
पहले यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय.
1 John chapter 2 verse 6.
पहले यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय छठा वचन.
The one who says he abides in Christ must walk in the same way as he walked.
बाइबल कहती है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे ये चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था.
Everyone,
हर एक कोई
who says,
जो कहता है,
I am a Christian.
हर एक कोई जो कहता है मैं मसीह हूं.
The Living Bible paraphrases it like this.
बाइबल में वचन ऐसा कहता है.
The Living Bible.
जीवित बाइबल.
Anyone who says he is a Christian must live as Jesus lived.
बाइबल कहती है हर एक कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं एक मसीह हूं, उसको मसीह जैसा जीना जरूरी है.
Is that how we are supposed to live?
क्या यही वो तरीका है जिस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है?
Because if we live like that, we'll have no regret in eternity.
क्योंकि यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे जैसे बाइबल कहती है, तो हमें अनंत काल में कोई दुख नहीं होगा.
There was one perfect life that was lived on this earth.
इस धरती पर एक सिद्ध जीवन था जो इस धरती पर बिताया गया था.
More we pattern our life after that life, we will have no regret in eternity.
और जितना ज्यादा से ज्यादा हम उस जीवन के अनुसार अपने जीवन को बदलते जाएंगे, हमें अनंत काल में कोई दुख ना होगा.
When we read a verse like this,
जब हम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं,
that tells us we are supposed to live like that.
हमें ये वचन बताता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए.
And if you believe that this is God's word,
और अगर आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है,
our heavenly Father will never tell us to do something which is impossible.
हमारा स्वर्गीय पिता हमें कोई ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जो हमारे लिए असंभव हो.
Will any of you fathers tell your sons to carry a 5-ton weight on his head?
क्या आप में से कोई पिता अपने बच्चों से कहेगा कि 5000 किलो का वजन अपने सिर पर उठा के चले?
That is impossible.
क्योंकि ये उसके लिए असंभव है.
He won't do it.
वो नहीं कर सकता है.
God is a better father than all of us.
परमेश्वर हम सभी से एक अच्छा पिता है.
He cannot ask us to do something impossible.
तो वो भी हमसे कोई काम ऐसा करने को नहीं कहेगा जो हम नहीं कर पाए.
He would have to be a very evil father to tell us to do something impossible.
अगर वो सच में ऐसा कहे तो वो एक बुरा पिता होगा.
Whatever he tells us is possible if we believe.
जो कुछ वो कहता है वो हम कर सकते हैं यदि हम विश्वास करें तो.
All things that are commanded in the Bible are possible if we believe.
सारी चीजें जो बाइबल में लिखी गई है वो हमारे साथ हो सकती है यदि हम विश्वास करें तो.
None of those things are possible if we don't believe.
इनमें से कोई भी बात नहीं हो सकती अगर हम अविश्वास दिखाएं.
So we believe that it is possible to live as Christ lived.
तो हम विश्वास करते हैं कि ऐसा जीवन जीना संभव है जो मसीह ने जिया.
That means to live by the same principles by which he lived.
जिसका मतलब ये है कि हम भी उन सिद्धांतों से जिए जिस सिद्धांतों को प्रभु यीशु ने पालकर जिए थे.
To say have the same attitude to money that he had.
हम वैसा ही व्यवहार पैसे के साथ करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया.
To look at women the way he looked at women.
जैसे स्त्रियों को प्रभु यीशु ने देखा हम भी उसी प्रकार स्त्रियों को देखें.
Purity.
शुद्धता से.
To live as a servant of others like he lived.
दूसरों का सेवक बनके वो जिया हम भी वैसा ही करें.
To live without any title or honor on this earth like he lived.
जैसे उसने जीवन जिया बिना किसी पद के बिना किसी इज्जत की इच्छा करते हुए.
Fulfill all the father's will before we leave this earth.
इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाया जाता अपने पिता की पूरी इच्छा उसने पूरी की.
That should be the goal of every Christian.
हर एक मसीह का यह लक्ष्य होना चाहिए.
Many people want to live a long life.
बहुत सारे लोग हैं जो लंबा जीवन जीना चाहते हैं.
I have never had a desire to live a long life.
मेरी कभी यह इच्छा नहीं थी कि मैं इस धरती पर लंबा जीवन जीऊं.
I happen to have lived a pretty long life by now, but I never had a desire for it.
अब तक मेरा जीवन काफी लंबा हो चुका है पर मैंने कभी इसकी इच्छा नहीं की थी.
Because from my earliest Christian life, Jesus was my example.
क्योंकि मेरे पहले की मसीह जीवन से ही यीशु मसीह मेरा उदाहरण रहा है.
And I see that he lived only 33 and a half years.
और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 33.5 वर्ष का जीवन बिताया.
Very short life.
उसका जीवन बहुत छोटा था.
But at the end of his life, he could say, "Father, I have finished the work you gave me to do."
पर उसके जीवन के अंत में वो कह सका, हे पिता, मैंने वो काम पूरा किया जो तूने मुझे करने को कहा था.
What's the use living to up 100 years and not finishing what God wanted you to do on this earth?
सोचिए अगर आप 100 साल का जीवन जीते हैं और आप वो काम नहीं करते जो परमेश्वर ने आपसे कहा है करने के लिए.
Many of us pray, "Lord, I want to glorify you in my life."
हम वैसे बहुत जन ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ मेरे जीवन से.
How do we glorify God?
कैसे हम उसकी महिमा कर सकते हैं?
Jesus said in John 17.
यीशु मसीह यहूना के 17वें अध्याय में कहते हैं.
John's Gospel chapter 17 and verse 4.
यहूना का सुसमाचार 17वां अध्याय और 4वां वचन.
Listen to these words.
इन वचनों को सुनिए.
Father,
पिता,
I have glorified you on earth by finishing the work you gave me to do.
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है.
How did he glorify the Father?
यीशु ने कैसे पिता की महिमा की?
By finishing the work the Father had given him to do.
वो कहता है पिता तेरे काम को पूरा करके मैंने तेरे नाम की महिमा पृथ्वी पर की है.
Whether you finish it in 33 years or it doesn't matter, if you finish the work you glorify the Father.
उसने 33.5 वर्ष में इस काम को पूरा किया उसने परमेश्वर की महिमा की.
Sometimes we think we glorify the Father by singing very emotionally on a Sunday morning.
कितने बार हम सोचते हैं कि मैं पिता की महिमा तब करता हूँ जब मैं पूरी भावना से भरकर रविवार सुबह अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के लिए गीत गाता हूँ.
Yeah, that is praising God and that's good.
परमेश्वर की स्तुति करना है वो अच्छी बात है.
And we should do it not only Sunday but every day.
और रविवार को ही नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए.
But if you want to glorify God, you got to finish the work God gave you to do.
पर यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सच्ची महिमा करें तो आपको वो काम पूरा करना होगा जो आपको देता है.
If you're not a child of God, of course God has no plan for your life.
अगर आप परमेश्वर के संतान नहीं तो बात ही नहीं है क्योंकि परमेश्वर की आपके कोई योजना आपके जीवन में आपको पता नहीं होगी.
But anyone here who has accepted Christ and who is born again, I want to say God has got a work for you to do.
पर यदि हम में से यहाँ पे कोई भी है जिनका नया जन्म हो चुका है जो प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार चुके तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन में है.
Because the moment you are born again, the Bible says you become a member of the body of Jesus Christ.
क्योंकि बाइबल कहती है जिस क्षण तुम नया जन्म ले लेते हो तुम मसीह के शरीर का एक अंग बन जाते हो.
And just like our human body,
और जैसे हमारा शरीर है
there are different parts with different functions.
जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है और हर एक अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य है.
But there is no part in this body which has no function.
पर इस पूरे शरीर में एक भी ऐसा अंग नहीं जिसका कुछ काम ना हो.
एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज गॉट अ फंक्शन.
इंसान के शरीर के हर एक अंग का एक महत्व है उसका कुछ काम है.
आई हैव हर्ड द डॉक्टर्स से दैट देयर इज अ पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड द अपेंडिक्स व्हिच हैज नो फंक्शन.
मैंने डॉक्टरों से सुना है कि इंसान के शरीर में एक भाग होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं जिसका उसका शरीर में कोई काम का नहीं होता है.
I mean, if the doctors were humble, they would say, "We haven't yet discovered the function. That is all."
पर अगर डॉक्टर अपने आप को नम्र करे, तो वो कह सकते कि उसका कुछ काम होगा पर हमें पता नहीं है.
There is nothing that God created in this body without a function.
इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर ने बनाई हो जिसका कोई काम नहीं हो इस शरीर में.
It may not be as important as another.
हो सकता है एक अंग का जो काम है वो दूसरे अंग के काम से महत्व नहीं होगा.
My little finger does not have as important a function as my heart.
मेरा जो छोटी उंगली है उसका काम मेरे दिल के जितना जरूरी काम नहीं है.
But it has a function, otherwise I would cut it off.
पर इसका कुछ काम है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं होता तो मैं इसे काट के फेंक देता.
Every part has a function.
वैसे ही हर एक अंग का कुछ भाग कुछ काम
है. We don't despise any part of this body.
इस शरीर के किसी भी अंग को हम तुच्छ नहीं जानते हैं.
I want to say to you in Jesus' name that you have a function, no matter how small you think you are.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, भले ही आप सोचते हो कि आप कितने ही छोटे हो पर आपका कुछ काम है.
However ungifted you may think you are.
आप सोचते हो मेरे पास परमेश्वर का कोई दान नहीं.
However ignorant you may think you are.
आप सोचते हो कि सबने मुझे अलग कर दिया, मैं किसी लायक नहीं हूँ.
However despised or poor you may be.
आप सोचते हो कि मैं एकदम तुच्छ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ.
I want to tell you that you are valuable in the body of Christ.
पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मसीह के देह में अनमोल हो.
There is a work for Jesus that nobody but you can do.
और ऐसा एक काम है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप कर सकते हो.
There are certain jobs which you can do which I can't do.
ऐसे कुछ काम है जो आप कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता हूँ.
And if you don't do it, nobody will do it.
अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा.
You may say, Brother Zach, I'm not even a little finger. I'm just like this nail of this little finger.
आप कहेंगे, Brother Zach, मैं तो ये तो छोटी उंगली के जैसा भी नहीं, मैं तो उसके नखून है उसके जितना हूँ.
Well, you know, when I feel scratchy.
आपको पता है जब मुझे खुजली आती है.
The only thing that'll help is these nails.
तो जो खाली एक चीज जो मेरी मदद करते हैं वो ये छोटा नखून है.
No other part of the body can relieve me of my scratchy feeling.
मेरे पूरे शरीर का दूसरा कोई भी अंग मुझे उस खुजली से छुटा नहीं सकता है सिवाय इस नखून के.
So, don't think the nails don't have a function.
तो ऐसा मत सोचिए कि ये नखून छोटा सा इसका कोई काम नहीं है.
The heart and the liver and the kidney and all can't help me when I'm feeling itchy somewhere.
Oh, ये दिल, ये फेफड़े और ये जो गुर्दे हैं मेरे कोई काम के नहीं जब मुझे खुजली आ रही हो.
I'm just trying to say that the weakest, the smallest, the youngest member of the body of Christ has got a function.
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे कमजोर हो, सबसे छोटा हो और सोचता हूँ कि मैं किसी काम का नहीं, उसका भी कोई काम मसीह के शरीर में है.
If you will make Jesus your example, you can live a worthwhile life on this earth and finish that function.
और अगर आप मसीह यीशु को अपना उदाहरण बना लेते हैं तो आप इस जीवन को एक मतलब का जीवन जी सकते हैं इस दुनिया में.
The Bible says in Hebrews chapter 2.
बाइबल इब्रानियों के दूसरे अध्याय में कहती है.
Hebrews in chapter 2.
इब्रानियों का दूसरा अध्याय.
And verse 17.
और 17 वचन.
Now these are amazing words which my guess is that most believers don't believe.
ये वो अद्भुत वचन है और मेरा ऐसा सोचना है कि शायद विश्वासी इस पर विश्वास नहीं करते हैं.
Many believers.
बहुत से विश्वासी.
You read it and tell me whether you believe it.
आप इस वचन को पढ़िए और आप मुझसे कहिए क्या आपने इस पर विश्वास किया.
It says here concerning Jesus.
ये वचन यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहता है.
That he was made in all things like his brothers.
ये वचन कहता है कि यीशु मसीह सारी चीजों में अपने भाइयों जैसा बना दिया गया.
You know, you and I are supposed to be the brothers of Jesus Christ.
बाइबल के अनुसार आप और मैं यीशु मसीह के भाई कहे जाते हैं.
That's a very important title.
अगर हमसे कोई ऐसा कहे तो ये सच में बहुत जरूरी और बहुत ही बड़ा आदर है हमारे लिए.
A brother.
एक भाई.
You know, that's what I tell people. When you call me a brother, do you know that's the highest title you can ever give?
और यही मैं लोगों से कहता हूँ, यदि आप मुझसे कहते हो कि आप मेरे भाई हो तो ये वो सबसे बड़ा पद है या वो नाम है जो आप मुझे कभी भी दे सकते हो.
You're calling me a brother of Jesus Christ.
क्योंकि आप मुझे यीशु मसीह का भाई कहते हो.
When I call you a sister,
जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बहन हो,
there is no greater title you can have. You're a sister of Jesus Christ.
तो इससे बड़ा कोई दूसरा नाम या आदर नहीं होगा क्योंकि आप यीशु मसीह की बहन हो.
So I say, please don't call me by these low down titles like Reverend and Right Reverend and all. Call me a brother.
तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे रेवरेंड और ऐसे छोटे पदों से मत, छोटे नामों से मत बुलाइए, पर मुझे भाई कह के बुलाइए.
There is no higher title than that.
उससे बड़ा कोई नाम नहीं.
A brother of Jesus Christ.
यीशु मसीह का भाई.
Jesus said that.
यीशु ने खुद कहा है.
Went to Mary Magdalene, go and tell my brothers.
यीशु ने मरियम मगदलीन से कहा, जाकर मेरे भाई से कह दो.
I ascend to my father and your father.
क्योंकि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ.
We have become his brothers.
हम सब यहाँ पर उसके भाई बन गए हैं.
Romans 8:29 says.
रोमियों के 8वें अध्याय में 29वें वचन में लिखा है.
That God has predestined us to become like Jesus Christ.
कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से योजना बनाकर रखी है कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाएं.
So that he might be the first among many brothers.
ताकि वो बहुत सारे भाइयों में से प्रथम हो.
Let me tell you something about what Jesus is called. By what name?
मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि यीशु को लोगों ने क्या कहा, किस नाम से पुकारा गया.
In John 3:16, he is called the only begotten Son.
यूहन्ना की तीसरे अध्याय 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का एकलौता पुत्र कहकर पुकारा गया.
After his resurrection, he is never called the only begotten Son.
पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद कभी भी यीशु को एकलौता पुत्र करके पुकारा नहीं गया.
Have you noticed that in the Bible?
क्या आपने बाइबल में इसकी नोंद ली है?
He is called the firstborn son.
उसको कहा गया है कि वो पहला जन्मा वैसा बेटा है.
What is the difference between only begotten and firstborn?
क्या फर्क है एकलौते बेटे के बीच में और पहले बेटे के बीच में?
Many years ago, I had only one son.
बहुत सालों पहले तक मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा था.
I could say this is my only son.
तो मैं उसे कह सकता था ये मेरा एकलौता बेटा है.
But after him, I had three more sons.
पर उसके बाद मुझे और तीन बेटे हुए.
Then I could not call him my only son.
तो मैं उस बेटे को नहीं कह सकता कि तू मेरा एकलौता बेटा है.
Then I started calling him my firstborn son.
फिर उसको मैंने ऐसा कहना शुरू किया, तू मेरा प्रथम या पहला बेटा है.
Do you see what happened at the resurrection?
आप जानते हैं पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ?
The only begotten became the firstborn.
वो एकलौता पहला बेटा बन गया.
Who are the others?
पर बाकी के बेटे कौन है?
You and me.
आप और मैं.
You recognize how important you are?
आप जानते हैं आपने जैसे कि आप और मैं कितने महत्वपूर्ण
हैं? You recognize what it is when somebody calls you brother?
आप जान गए कि जब कोई आपको भाई कहके बुलाता है, जब आपको बहन कहके बुलाते हैं,
younger brother, younger brother of Jesus Christ?
आपसे कहता है कि आप यीशु मसीह के छोटे भाई हो.
Younger sister of Jesus Christ?
तुम यीशु मसीह की छोटी बहन हो.
And it says here he was made in all things like his brothers.
और वचन में लिखा है कि वो सारी चीजों में अपने भाइयों के समान बनाया गया.
He came with my limitations.
वो हमारी सीमित चीजों के समान सीमा में लाया गया.
The only thing he didn't have was my sin.
और सिर्फ एक चीज जो उसके पास नहीं थी वो मेरे पाप थे.
He could not have my sin because he was the son of God.
वो मेरे पाप उसके अंदर नहीं थे क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था.
But in every other way as a human being he was exactly like you and me.
पर बाकी सारी चीजों में किसी भी दूसरे इंसान के जैसा वो आपके जैसे मेरे जैसा था.
He was tempted, Hebrews 4:15, exactly like you and me.
इब्रानियों के 4वें अध्याय 15वें वचन के अनुसार जैसे आपकी परीक्षा होती है उसकी परीक्षा हुई.
He was 100% a human being.
वो 100% इंसान था.
Just like he was 100% God.
वैसे ही जैसे वो 100% परमेश्वर था.
All Christians believe that Jesus Christ is 100% God.
सारे मसीह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है.
The back of their mind they got a feeling that he was only about 25% man.
पर उनके मन के इनके दिमाग के पीछे ये बात होती है कि शायद ही वो 25% इंसान हुआ हो.
That is a heresy.
ये एक गलत बात है.
As much a heresy as if you call him 25% God.
आप गलत बात सोचते हो जब आप कहते हो कि यीशु मसीह 25% व्यक्ति होगा.
The truth is he was 100% God and 100% man.
पर सच्चाई ये है कि वो 100% परमेश्वर 100% इंसान था.
And if you don't believe either of them, you got a wrong doctrine.
और अगर इनमें से दोनों बातों में से अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आपके दिमाग में गलत संदेश है.
And Christians are more in danger of not recognizing that he is 100% man.
और अधिकतर मसीह इस खतरे में है कि वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह 100% इंसान भी था.
They easily accept he's 100% God.
आसानी से स्वीकार लेते कि हाँ यीशु मसीह 100% परमेश्वर था.
But the devil fights when anybody preaches that he was 100% man also.
पर शैतान लड़ता है जब कोई प्रचार करता है कि यीशु मसीह 100% इंसान था.
I have preached it for 30 years and I know the opposition I have faced from the devil for preaching it.
Maine 30 saal tak ye sandesh prachar kiya hai aur maine shaitan se aane wale hamlon ka samna bhi kiya hai.
It has changed my life.
Is cheezon ne mere jeevan ko badal diya hai.
That is when I discovered that I could actually follow him.
Kyunki jab maine ye cheeze jani tab main जान गया कि क्योंकि वो भी इंसान था मैं भी उसके पीछे चल सकता
हूँ. I could overcome like he overcame.
क्योंकि जैसे उसने विजय पाई मैं भी विजय पा सकता हूँ.
That like he lived in the power of the Spirit, I could live in the power of the Spirit.
जैसे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिया मैं भी सामर्थ्य से जी सकता हूँ.
That I who am a child of Adam with such a lover of money could become like him and be free from the love of money.
कि मैं जो आदम की संतान हूँ, मेरे पाप के स्वभाव के अनुसार जो पैसे में प्यार करता है, उसके जैसी चाल चल सकता है.
You know when that began, when faith for that came into my heart.
आप जानते हैं इसके लिए विश्वास कब मेरे हृदय में आया?
When I discovered the truth that Jesus was not only 100% God but also 100% man.
जब मैंने ये सच्चाई को जान लिया कि यीशु मसीह सिर्फ 100% परमेश्वर नहीं पर 100% इंसान भी था.
It will change your life when you see it.
जब आप इस चीजों को देखोगे, जान लोगे, ये आपके जीवन को बदल देगा.
The devil has robbed you of your inheritance by hiding this truth from you.
शैतान ने इस सच्चाई को आपसे छुपाकर आपके वारस से, आपकी वारिस की जायदाद से आपको चुरा लिया, आपसे अलग कर दिया है.
And when I started preaching, God gave me the gift to preach His word.
जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे दान दिया कि मैं उसके वचन को प्रचार करूं.
I had many examples to follow.
मेरे पास बहुत सारे उदाहरण थे कि मैं उनका पीछा करूं.
Many examples from America of people who jump up and down the platform.
मेरे पास बहुत सारे उदाहरण थे प्रचार करने के अमेरिका से, जो पूरे प्लेटफॉर्म पे, मंच पे, यहाँ वहाँ.
And various types of preachers.
और वो कहते हैं, अरे ये बड़े प्रचारक हैं.
I decided to choose Jesus as my example.
मैंने चुना कि मैं यीशु आपके जैसे प्रचार करूंगा.
I said, Lord, I want to see in the Gospels how you preached.
मैंने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि सुसमाचार की किताब में आपने कैसा प्रचार किया.
I couldn't imagine Jesus jumping up and down the platform.
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यीशु मसीह एक मंच पे खड़े होकर यहाँ वहाँ कूदे.
So I didn't want to preach like that.
तो मैं भी ऐसा प्रचार नहीं करना चाहता.
I said, Lord, you're my example in every area.
मैंने कहा, प्रभु तू मेरा उदाहरण है मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में.
Not just in method of preaching.
सिर्फ प्रचार करने के तरीके में नहीं.
In the content of what I preach.
पर उस सारी चीजों में, सारी बातों में जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, सारी बातों में.
I spent years studying how Jesus preached.
मैंने सालों बिताए ये जानने के लिए कि यीशु मसीह ने प्रचार कैसे किया.
I saw Jesus was never boring.
मैंने देखा कि यीशु कभी उबाऊ नहीं थे.
I saw he was always interesting to listen.
मैंने देखा कि यीशु मसीह हमेशा रुचि रखते थे लोगों को बताने के लिए.
I saw that he spoke in a way that even children could understand because he was so simple.
मैंने देखा कि यीशु मसीह की बातें इतनी आसान थी कि बच्चे भी उसको समझ सकते थे.
And it changed my preaching style.
और इसी बात ने मेरे प्रचार के तरीके को बदल दिया.
Every area of your life will change when you see that Jesus was made like us in all things.
आपके जीवन का हर एक क्षेत्र बदल जाएगा जब आप ये जान लोगे कि यीशु मसीह को हमारी समानता में बना दिया गया था.
I saw how Jesus treated his fellow disciples.
मैंने देखा कि यीशु मसीह ने अपने साथ रहने वाले शिष्यों के साथ कैसा
बर्ताव किया. That is how I must live and dwell with my co-workers.
तो मैंने सीखा कि मुझे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए.
I was not above any of them.
मैं किसी के ऊपर नहीं था.
I may be more gifted, but I'm not above them.
हो सकता है मुझे परमेश्वर ने अधिक दान दिया हो, पर मैं उनके ऊपर नहीं.
Jesus was more gifted, but he was not above any of his disciples.
यीशु के पास अधिक दान थे, पर यीशु किसी के ऊपर कभी उसने नहीं कहा.
He was Lord of Lords, but he made himself like all men.
वो प्रभु का प्रभु था, पर उसने अपने आप को इंसान के जैसा किया.
It completely changed my Christian life.
इस बातों ने मेरे मसीह जीवन को पूरा बदल दिया.
Just like when I first understood that Christ died for my sins, I was born again.
जैसे पहली बार जो मैंने समझी कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए, तो मेरा जीवन बदल गया.
In the same way, when I saw that Jesus became a man just like me, in order that he could be an example for me.
उसी प्रकार जब मैंने इस बात को जाना कि यीशु मसीह दुनिया में आया कि मेरे सामने एक उदाहरण रखे कि मैं कैसा जीवन जीऊं,
area after area after area, I saw how I was supposed to live on this earth.
एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र में मैंने जाना कि प्रभु यीशु कैसे दुनिया में जिया और मुझे कैसा जीना चाहिए.
And I had faith that what God the Father did for Jesus Christ, He will do for me.
और मेरे पास वो विश्वास था कि परमपिता परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु के लिए किया, वो मेरे लिए कर सकता है.
Now, when you hear a statement like that, you'll say, "What arrogance, Brother Zach, to say something like that?"
आप कहोगे जब ऐसा वाक्य आप सुनते हो कि Brother Zach क्या बात कर रहे हैं कि जो प्रभु ने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए कर सकता है?
Shall I show it to you from Scripture?
क्या मैं आपको वचनों में से बताऊं?
Romans chapter 2.
रोमियों का दूसरा अध्याय.
Verse 11.
और ग्यारहवां वचन.
Romans chapter 2, verse 11.
रोमियों का ग्यारहवां अध्याय दूसरा वचन.
There is no partiality with God.
परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं.
That means he doesn't do special show special favoritism to one of his children.
इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर अपने किन्हीं बच्चों के बीच में खास अनुग्रह, खास चीजें या किसी के बीच में कम ऐसा कभी नहीं करता है.
I am a very very poor father compared to God.
मैं एक बहुत ही छोटा पिता हूं या बहुत ही कम पिता हूं जिसे बोल सकते हैं परमेश्वर की तुलना में.
But I have tried to be completely without partiality to my four sons.
पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने चारों बेटों के बीच में कभी ऊंच नीच या भेदभाव नहीं करूं.
Everything I did for my first son, I did for the other three.
सब चीजें जो भी मैं अपने पहले बेटे को देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उन सभी को बराबर मिले.
If I got clothes for my first son, I got it for the other three.
अगर मैंने अपने पहले बेटों के लिए कपड़े खरीद बेटे के लिए कपड़ा खरीदा तो मैं तीनों के लिए कपड़ा खरीद कर लेकर
आता हूं. Education I gave my first son, I gave the other three.
अगर कोई भी चीज मैं अपने पहले बेटे को देता हूं, मैं दूसरे बच्चे को देता हूं.
I gave my first son, I gave the other three.
अगर मैंने अपने पहले बेटे को खाना दिया है, जो खाना दिया वही मैं अपने तीनों बेटों को देता हूं.
Care I bestowed on my first son, I bestowed on the other three.
जिस तरीके का ख्याल मैं अपने बड़े बेटे का करता हूं, मैं तीनों के लिए करता हूं.
I tried my best to be totally without partiality towards my four sons.
मैंने अपना उत्तम कोशिश की है कि मैं अपने चारों बेटों के साथ कोई भेदभाव नहीं करूं और सभी को समान रीति से देखूं.
And I think my sons will testify.
और मेरे बेटे इसकी गवाही दे सकते हैं.
I never showed partiality to any of them.
कि मैंने उनमें से किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया.
They were all equally precious to me because they were all my sons.
वो सभी मेरे लिए एक समान मूल्यवान थे क्योंकि वो सभी मेरे पुत्र हैं.
Okay, now multiply that by a million and you'll understand God's impartiality.
और अब आप इस संख्या को करोड़ों के साथ गुणा कर दीजिए, फिर आप समझोगे परमेश्वर के विषय में.
Once upon a time, God had only one son.
एक समय पे परमेश्वर का सिर्फ एक पुत्र था.
His only begotten son.
एक लौता पुत्र.
Today he has many sons.
आज उसके बहुत सारे पुत्र हैं.
I am one of them.
और मैं भी उसमें से एक हूँ.
So are you.
वैसे ही आप भी हैं.
But you may not claim your privilege.
पर आज आप अपने इस सौभाग्य को कबूल नहीं करते हो, लेते नहीं हो.
For many years, I didn't claim my privilege.
बहुत सालों तक मैंने ये ग्रहण नहीं किया.
I was born again for 16 years before I started claiming my privilege as a son of God.
मेरा नया जन्म लेकर मसीह को स्वीकार कर 16 वर्ष हो गए थे और उसके बाद मैंने ये जाना कि मेरा हक है जो मुझे लेना है.
Only then I realized that everything that God did for his first son, he will do for all his other sons.
उसके बाद ही मैंने ये जाना कि वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने अपने एकलौते प्रथम पुत्र को दी, वो हमारे लिए भी है.
Just like I would take care of all my sons like I did for my elder son.
वैसे ही जैसे मैं अपने से सबसे बड़े बेटे के साथ करता हूं, मैं तीनों बेटों के साथ करता
हूं. Then I realized that just like God had a plan for his first son's life on earth, he had a plan for my life on earth.
मैंने ये जान लिया कि जैसे परमेश्वर के पास एक योजना थी अपने प्रथम पुत्र प्रभु यीशु के विषय में, वैसे ही हम सभी के लिए उसके पास एक योजना है.
It changed my life.
और इस बात को जानने के बाद मेरा जीवन बदल गया.
That my life was not without purpose.
उसके बाद मेरा जीवन लक्ष्य के बिना नहीं था.
You apply that to yourself too.
आप इस बात को अपने जीवन में अपना कर देखिए.
If you stop believing the lie of the devil,
अगर आप शैतान की झूठ बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं,
that he says, no, you are not so valuable as Jesus.
आप कहोगे नहीं, मैं यीशु के जितना मौल्यवान इतना ऊंचा
नहीं हूं. Isn't that what the devil tells you?
ये शैतान आपसे कहता है.
Oh, Jesus was special, but you're not so valuable to God.
यीशु एक खास व्यक्ति था, तुम इतने मौल्यवान नहीं हो.
I'll tell you.
मैं तुमसे कहता हूँ.
I am bold to say that I am as valuable to God as Jesus himself.
मैं धार से कहता हूं कि परमेश्वर की आंखों में मेरा मोल प्रभु यीशु के समान है.
Not because I'm better than you, it's because I believe the Bible, that's all.
इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे उत्तम हूं, पर इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता
हूं. Because I believe that there is no partiality with God.
क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के सामने उसकी आंखों में भेदभाव नहीं है.
That Jesus is the firstborn among many brothers of whom I am one.
कि यीशु मसीह बहुत सारे भाइयों में पहलौठा पुत्र है.
The devil has robbed Christians of their inheritance.
शैतान ने मसीहों के पास से उनकी वारस को चुरा लिया है.
I cannot give you your inheritance.
मैं आपको आपकी वारस नहीं दे सकता हूँ.
But I can show it to you.
पर मैं आपको दिखा सकता हूँ.
And I say, go and claim it.
और मैं आपसे कह सकता हूँ, जाओ और तुम्हारा हक उसे ले लो.
My brothers and sisters.
मेरे भाई और बहनों.
You need not have lived that defeated life that you have lived for so many years.
इतने साल से जो हारा हुआ जीवन जिया है, वो आप नहीं जीते थे.
If you had known this truth, your life would have been different long ago.
अगर आप इस सच्चाई को जान लेते तो कई वर्ष पहले ही आप एक विजयी जीवन जीना शुरू कर देते थे.
I'm not telling you a fairy tale.
मैं आपको कोई कल्पना की बात नहीं कह रहा
हूं. For more than 25 years of my life, I have experienced something of this.
मेरे जीवन के 25 सालों से अधिक मैंने इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया है.
I've heard sometimes even preachers and servants of God say this.
मैंने सुना है कई बार प्रचारक और कुछ परमेश्वर के दास ऐसा कहते हैं.
Yeah, we get discouraged sometimes, brother.
और कितने बार भाइयों हम निराश हो जाते हैं.
But what to do? Even the great prophet Elijah was discouraged.
पर हमारे पास हमारे सामने भविष्यवक्ता एलिय्याह भी है जो निराश हुए थे.
I said, well, if Elijah is the author and finisher of your faith, I suppose you have to get discouraged.
तो मैं लोगों से कहता हूं, अगर तुम एलाइजा को देखकर कहते हो कि वो निराश हुए तो हमें भी निराश होना चाहिए, तो एलाइजा तुम्हारे विश्वास का शुरू करने वाला और पूरा करने वाला होगा।
But my story is different. Jesus is the author and finisher of my faith.
पर भाइयों, मेरी कहानी अलग है। यीशु मसीह मेरे विश्वास का शुरू करने वाला और उसको सिद्ध करने वाला है।
And Jesus never sat under a juniper tree like Elijah and saying, "Oh Father, I'm fed up with my life. Please take it away."
और यीशु मसीह कभी एक जूनिपर के झाड़ के नीचे बैठकर उसने ये नहीं कहा, हे पिता, मैं अपने जीवन से कंटाल गया हूं।
He was never discouraged.
वो कभी निराश नहीं हुआ।
And I had faith that I will never be discouraged.
और मेरे पास ये विश्वास है कि मैं कभी भी निराश नहीं होऊंगा।
And I was not like that earlier on.
पर पहले मैं ऐसा नहीं था।
I was one of the most discouraged Christians you could find when after I was born again.
इससे पहले मैंने मसीह बनने के बाद मैं बहुत एक निराश व्यक्ति था। आप कहीं भी जाएंगे, आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं।
Go and ask my wife, she'll tell you that.
आप जाके मेरी बीवी से पूछ सकते हैं मैं कितना निराश था।
Frequently depressed.
Completely, लगातार मैं निराश रहता था।
Till God filled me with the Holy Spirit.
उस समय तक जब तक परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरा।
Not just that.
और सिर्फ इतनी नहीं।
And showed me that Jesus became like me in all things.
और उसके बाद जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि यीशु मसीह मेरे जैसा बना है,
and that there's no partiality with God.
और दूसरी बात कि परमेश्वर के आंखों के सामने कोई ऊंच नीच नहीं है,
that left to myself I will be discouraged 24 hours a day.
मैं अगर अपने आप के लिए छोड़ दिया जाता तो मैं 24 घंटे दिन के उदास या निराश बैठा रहता.
Because I had a loving father who was not partial.
पर क्योंकि मेरे पास एक प्यारा पिता है जिसके आंखों में ऊंच नीच नहीं है.
He would do everything for me that he did for the eldest son.
वो मेरे लिए सब वो चीजें करेगा जो उसने मेरे बड़े भाई या अपने पहले बेटे के लिए की.
As he cared for Jesus, he will care for me.
जैसे उसने यीशु को संभाला, वो मुझे संभालेगा.
As he supported Jesus, he would support me.
जैसे उसने यीशु को आधार दिया, वो मुझे भी आधार देगा.
As he stood by Jesus every time Jesus got up to preach, He would stand by me every time I got up to preach.
जब कभी प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए खड़े हुए, परमेश्वर पिता उसके साथ खड़ा रहा, वैसे वो मेरे साथ खड़ा रहेगा जब मैं प्रचार करूंगा.
The secret of the Christian life and an anointed ministry is not just the baptism in the Holy Spirit.
मसीही जीवन का प्रचार करने का और एक अभिषेक जीवन पाने का राज ये नहीं कि सिर्फ हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लें.
We need the baptism in the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें चाहिए.
But you also need to believe that as the Father stood by Jesus, He will stand by you.
पर आपको विश्वास करना जरूरी है कि जैसे पिता यीशु के साथ खड़े रहे, वो मेरे साथ भी खड़े रहेंगे.
The Father cared for Jesus, He will care for you.
जैसे पिता ने यीशु का ख्याल किया, वो मेरा भी ख्याल करेंगे.
As the Father helped Jesus, He will help you.
जैसे पिता ने यीशु का मदद किया, मेरी भी मदद करेंगे.
As the Father protected Jesus from His enemies, He will protect you.
जैसे परमेश्वर ने यीशु की सुरक्षा की उसके शत्रुओं से, वो आपको भी संभालेगा.
Have you noticed those times when Jesus, it's written about Jesus like this?
क्या आपने उन बातों के बारे में पढ़ा है जब यही बातें यीशु के विषय में बाइबल में लिखी गई हैं?
The people came to capture him.
लोग आए कि यीशु को पकड़े.
But they could not capture him.
पर उसको पकड़ नहीं पाए.
Why?
क्यों?
Because his hour had not yet come. That's all.
क्योंकि बाइबल कहती है उसका समय नहीं आया था.
Not because they were not strong enough.
इसलिए नहीं क्योंकि जो पकड़ने आए थे वे लोग कमजोर थे.
Or because he had a big military supporting him.
इसलिए नहीं कि यीशु के साथ एक बड़ी सेना खड़ी थी.
One simple thing.
एक छोटी सी बात थी.
His hour had not yet come.
उसका समय अब तक नहीं आया था.
We read in Luke chapter 4.
हम लूका के चौथे अध्याय में
बात करते हैं. One day when he was preaching, they pulled him down from the platform.
कि एक दिन जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उनको लोगों ने मंच से उतार दिया.
They got disturbed by what he preached.
क्योंकि जो कुछ यीशु प्रचार कर रहे थे उससे वे लोग परेशान हो गए थे.
He was such a radical preacher that they would interrupt him in the middle of the message and stop him.
यीशु मसीह एक ऐसा जोशीला प्रचारक था कि उसके प्रचार के बीच में लोग उसको रोकने लगे.
He was not this clever psychological type of preacher trying to please everybody.
वो एक साइकोलॉजिकल आदमी नहीं था जो लोगों के मन के ही अनुसार उनके से बातें करे.
He spoke the truth and it hurt.
यीशु मसीह ने सच्चाई कहा था.
And they pulled him down from the platform in Luke chapter 4.
और लूका के चौथे अध्याय में कहता है इसलिए लोगों ने उनको मन से नीचे उतार दिया.
Whole crowd gathered to take him to the top of the cliff to throw him down.
और बाइबल कहती है एक पहाड़ी के चोटी से नीचे फेंकने के लिए सारी भीड़ उसके आसपास जमा हो गई.
You think they can kill him?
आपको क्या लगता है लोगों ने उसे मार दिया?
No. That was not the father's plan for him to die like that.
पिता की इच्छा नहीं थी, उसकी योजना नहीं थी कि यीशु मसीह ऐसे मरे.
You know what the Bible says?
आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है?
He quietly walked through the midst of them and went away.
वो शांत रीति से उनके बीच से निकलकर चला गया.
I've often wondered how that happened.
मैं सोचता हूँ कि ये बात कैसी हुई होगी?
How can a crowd of 100 people gang up on one man and that man quietly walks through and escapes?
कैसे 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ एक आदमी को घेर लेती है और फिर भी वो आदमी उनके बीच से शांति से निकल जाता है?
Now what I'm going to tell you is not in scripture, it's just my imagination.
अभी जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वचनों में नहीं है, वो मेरी कल्पना है.
I try to think, how did that happen? Lord,
मैं सोचता हूँ कि प्रभु ये कैसा हुआ होगा?
It doesn't say an angel from heaven came or any such thing.
बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि उस समय भीड़ थी और स्वर्गदूत आया और यीशु की मदद की.
I think what happened must have been something like this.
मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा.
That they began to have a discussion.
कि उनके बीच में आपस में वो बातचीत करने लगे होंगे.
How to kill him?
कि कैसे
throw him on the cliff? And they had, by the time they were, this argument was going on, Jesus quietly walked away.
वो सोच रहे होंगे आपस में बातचीत करेंगे, इस यीशु को कैसे मारे, क्या इसको पहाड़ी से फेंक दें या क्या करें? और जब तक वो आपस में बातचीत ही कर रहे थे, यीशु शांति से निकल गए.
God is a great master.
परमेश्वर एक बड़ा स्वामी है.
Manipulating people so that they get into arguments so that his servants can quietly walk away.
परमेश्वर लोगों को अपने ही बातों में दूंध कर देता है, वो घूम जाते हैं और उसके दास आराम से निकल जाते हैं.
What he did for Jesus, he will do for me.
जो उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए करेगा.
My brother, sister,
मेरे भाई और बहनों,
you know how this will affect your life?
आप जानते हैं आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा?
You won't be afraid of dying of cancer or a car accident or any such thing.
आप कभी नहीं डरोगे कैंसर से, कार एक्सीडेंट या किसी भी दूसरी घटना से मरने से.
Or in any other way before God's time.
आप कभी नहीं डरोगे मरने से, इससे भी पहले आप सोचेंगे परमेश्वर का टाइम नहीं आया है.
I'm not saying you won't die.
मैं नहीं कहता हूँ कि आप कभी मरोगे नहीं.
I'm not saying people won't kill you.
मैं नहीं कहता हूँ कि लोग आपको मार नहीं सकते हैं.
They killed Jesus.
उन्होंने लोग यीशु को मारा.
They killed Peter, Paul, James, all of them.
उन्होंने पत्रस, यूहन्ना, याकूब सभी को मार डाला.
You may be killed too.
हो सकता है आपको भी मार डाले.
And so may I be killed.
हो सकता है मुझे मार डाले.
But not before God's time. That's what I want to say.
परमेश्वर के समय से पहले वो नहीं कर सकते, ये मैं आपसे कहना चाहता
हूँ. For me also there is an hour that has to come.
मेरे लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है जिसका आना जरूरी है.
And that's why we are at rest.
और इसलिए हम जोशीले हैं.
That's why we don't live in fear.
और इसलिए हम डर के नहीं जीते हैं.
We are careful.
हम सावधान हैं.
Jesus, it says about Jesus in John chapter 7 that he did not go to Judea because they were trying to kill him there.
यूहन्ना के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यहूदिया के शहर में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि लोग तैयार थे वहां पर उनको मारने के लिए.
We must be careful if somebody is trying to kill us somewhere. Why should we go there?
हमें सावधान रहना चाहिए. अगर कोई पहले से आगे खड़ा है हमें मारने के लिए तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए.
Unless God tells you to go, then you go.
जब तक परमेश्वर नहीं कहते कि तुम वहां जाओ तब तक हम नहीं जाना चाहिए. फिर अगर परमेश्वर कहता है तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा भी करेंगे.
Everything we look at the life of Jesus, that is for us too.
जो कुछ हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं वो हमारे लिए भी है.
Why?
क्यों?
Because there is no partiality with God.
क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई ऊंच नीच नहीं है.
What he did for his first son,
जो कुछ उसने अपने पहले पुत्र के लिए किया है,
he will do for all the other sons and daughters.
वो उनके अपने सारे दूसरे बेटे और बेटियों के लिए करेगा.
You must never again have a low sense of uselessness and good for nothingness like the devil's made you feel for so many years.
आज तक जैसा शैतान ने आपको भावनाओं में फंसा कर कहते रहे कि तू किसी काम का नहीं है, तू नीचा आदमी है, परमेश्वर के लायक नहीं है, वो फिर से आपके मन पे आप राज मत करने दीजिए.
How can you be useless and good for nothing if you are a younger brother or sister of Jesus Christ?
अगर आप यीशु मसीह के सच में छोटे भाई छोटे बहन है तो आप सच में किसी लायक के या नीचे मसीह नहीं हो सकते हैं.
You say, but brother, I've not been so faithful.
आप कहते हो भाई मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं हूँ.
That's because you don't believe how important you are.
तुम विश्वास योग्य इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते कि तुम कितने जरूरी हो परमेश्वर के सामने.
You know the whole secret of Jesus' life.
आप जानते हैं यीशु मसीह के पूरे जीवन का रहस्य क्या था?
Basically one thing.
सिर्फ एक चीज.
He had such a confident relationship with his heavenly father.
उसका इतना भरोसे का रिश्ता था अपने स्वर्गीय पिता के साथ.
My father cares for me.
मेरा पिता मेरी चिंता करता है.
My father loves me.
मेरा पिता मुझसे प्यार करता है.
And the plan he has made for my life is the best possible plan I can ever have.
और वो योजना जो उसने मेरे जीवन के लिए बनाई है वो सबसे उत्तम योजना है जो कभी भी मेरे जीवन में हो सकती है.
When I was 21 years old,
जब मैं खुद 21 वर्ष का था,
and I had just taken baptism,
मैंने तभी बपतिस्मा लिया था,
I was gripped by one truth.
एक सच्चाई ने मेरे जीवन को हिला दिया.
That my heavenly father had made a plan for my life.
कि मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे जीवन के लिए जरूर एक योजना बनाई है.
And I got a terrific passion in my life at that time.
और उस समय मेरे जीवन में मुझे एक बड़ा जोश मिल गया.
Say, Lord, I don't know how long I'll live.
मैंने कहा प्रभु मुझे पता नहीं मैं कितने वर्ष जिंदा रहने वाला हूँ.
Only 21.
हो सकता है 21.
I don't know what lies ahead of me.
उसके बाद क्या है मुझे पता नहीं.
But I want to fulfill your plan for my life before I leave this earth.
पर प्रभु इससे पहले कि मैं धरती के जीवन को खत्म करके आपके पास आऊं मैं आपकी योजना को पूरी करना चाहता हूं.
I'm willing to pay any price.
उसके लिए मैं कोई भी दाम चुका सकता हूं.
I don't care for the opinion of any Tom, Dick or Harry.
और उसके बाद चाहे कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी कहे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है.
I promise you God I will only seek to please you all my life.
उसके बाद मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु मैं अपने पूरे जीवन में यह सीखूंगा कि मैं तुझे खुश करूं.
Let people say or do what they like to me.
लोगों को जो कहना है वो कहने दो, जो करना चाहते हैं करने दो.
You say that to God, it'll change your life.
आप परमेश्वर को ये बात कह सकते हैं और आपका जीवन बदल जाएगा.
You say, but so many years of my life I wasted.
पर आप कहोगे कि भैया आप मैंने इतना सारा वर्ष अपने जीवन का नाश कर दिया है.
Never mind, brother, sister.
पर इसकी चिंता मत कीजिए मेरे भाई और बहनों.
You are not in the grave yet.
आप अभी तक कब्र में नहीं हो.
You got some years left ahead of you.
अभी भी आपके जीवन के कुछ साल बाकी हैं.
And God is so sovereign.
और परमेश्वर इतना महान है
that he can even take the rest of your life and do something wonderful with it.
कि परमेश्वर अभी आपके बचे हुए जीवन को लेकर कुछ महान काम कर सकता है.
What is the meaning of that parable which Jesus spoke?
उस दृष्टांत का क्या मतलब था जो प्रभु यीशु ने कहा?
That some people came to work at the 11th hour of the day.
कुछ लोग आए कि बारी में काम करें दिन के आखिरी घंटे में या ग्यारहवें घंटे में.
There are only 12 hours in the daytime, 11 hours they wasted.
दिन में सिर्फ 12 घंटे होते हैं और यीशु ने उस दृष्टांत में कहा कि वे लोग ग्यारहवें घंटे में आए थे बाड़ी में कि वो काम
करें. They came so late.
वो इतने देरी से आए थे.
They wasted 11 hours.
उन्होंने पूरे दिन का 11 घंटा व्यर्थ कर दिया था.
They came to work for 1 hour.
वो सिर्फ एक घंटे के लिए काम करने आए थे.
And they got the best reward.
और उनको जो उत्तम था वो पगार मिला.
Do you believe that God can do that for you?
क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है?
Maybe you're 70 years old.
हो सकता है आप 70 वर्ष के हों.
With blood pressure and diabetes and 101 other problems.
मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप की बीमारी और मुझे 101 और बीमारियां हैं.
One foot in the grave.
मेरा एक पैर कब्र में है.
Okay, I agree. 11 hours are over for you.
तो मैं कहूंगा कि आपके 11 घंटे खत्म हो गए हैं.
But brother, you got 1 hour left.
पर मेरे भाई एक घंटा बाकी है.
Do something with that.
उसके एक घंटे के साथ कुछ कीजिए.
Say, Lord, take my life.
प्रभु मेरे जीवन को ले.
Do something with it.
मेरे साथ कुछ कर.
I know I wasted many years.
मैं जानता हूं मैंने इतने सारे साल बर्बाद किए हैं.
Not going to be like that anymore.
पर अब मैं ये नहीं करूंगा.
I want to live the rest of my life with no regret in eternity.
मैं अब अपना बाकी का जीवन ऐसा जीना चाहता हूं ताकि अनंत जीवन में मुझे इस जीवन के बारे में दुख ना हो.
Ask God to fill you with his Holy Spirit.
प्रभु से मांगे कि प्रभु तू मेरे जीवन को अपनी
पवित्र आत्मा से भर दे. Don't care for the opinion of men.
और दुनिया में क्या लोग आपके विषय में कहते हैं उसके बारे में चिंता मत कीजिए.
And I'll tell you, you will yet accomplish something for the Lord.
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के लिए जरूर कुछ काम कर देंगे.
Nothing is impossible with God.
क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी बात असंभव नहीं है.
Trust him.
उस पर भरोसा कीजिए.
Don't say I'm weak.
आप कहेंगे मैं कमजोर हूं.
God takes weak people.
परमेश्वर कमजोरों को उठाता है.
He manifests his power through weak people.
अपनी ताकत को वो कमजोरों के द्वारा दिखाता है.
You know, once when Jesus wanted to go into Jerusalem,
आप जानते एक समय जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाना चाहते थे,
he didn't ask for a horse.
उसने किसी घोड़े की मांग नहीं की.
He said, "Go into that town and you'll find a donkey."
और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जाओ तुम नीचे जाओ और वहां पे तुम्हें एक गधा मिलेगा.
And if anybody asks, why are you losing this donkey?
अब उस बंधे हुए गधे को तुम खोल के लाते समय यदि तुमसे कोई पूछे तुम्हें ये गधा क्यों चाहिए?
Say the Lord has need of him.
तो तुम उनसे कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है.
Do you feel you're as stupid as a donkey?
क्या आप सोचते कि आप गधे के जितने मूर्ख हैं?
The Lord says the Lord has need of you.
तो प्रभु कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है.
If he could speak through a donkey to Balaam, he can speak through you.
अगर वो गधे से मुंह से बालन से कह सकता है तो आपके द्वारा भी बात कर सकता है.
If he could ride on a donkey in triumph into Jerusalem, he can ride on you.
अगर यरूशलेम पे जय पाने के लिए वो गधे पर बैठकर आ सकता है तो आप पर भी सवार हो सकता है.
That's why Jesus took these low down creatures.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नीचे समझे जाने वाले सृष्टि चीजों को लिया.
To give hope for all of us.
ताकि हम सभी को आशा मिले.
God has chosen the weak and the foolish and the stupid.
परमेश्वर ने कमजोर नीचे और जो सोचते कि मैं सबसे मूर्ख हूं ऐसे लोगों को उठाया.
You may not think I was like that.
आप सोचोगे मैं तो ऐसा नहीं हूंगा.
You didn't know what I was like when I was a schoolboy.
पर आपको नहीं पता कि जब मैं एक विद्यार्थी था तब मैं कैसा था.
I was shy, timid, afraid.
मैं शर्माने वाला, शर्मीला. डरने वाला और अपने आप में गुस्से बैठने वाला लड़का स्टैंड बिफोर पीपल मैं लोगों के सामने खड़े रहने से डरने वाला ऐसा लड़का था
गॉड टुक दिस वीक यंग मैन एंड फिल्ड मी विद द होली स्पिरिट
पर परमेश्वर ने इसी कमजोर और डरने वाले लड़के को उठाया और अपनी पवित्र आत्मा से भरा
टोल्ड मी दैट आई वाज अ यंगर ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट
और मुझसे कहा कि मैं यीशु मसीह का छोटा भाई हूं
एंड टोल्ड मी दैट आई कुड फॉलो हिम
और मुझसे कहा कि तू उसका पीछा कर सकता है
ही सेड डोंट बी अफ्रेड इफ पीपल कॉल यू ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स डोंट वरी अबाउट दैट
और उसने मुझसे कहा तू मत डर लोग तुझे जो नाम देते दे रहे थे
I'm very happy about the way I live my life.
और मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार का जीवन मैंने जीवा है उसके विषय में.
You can follow Jesus too.
आप यीशु का पीछा कर सकते हैं.
I want to say one more thing before I close.
इससे पहले कि मैं अपने संदेश को पूरा करूँ मैं एक आखिरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ.
You have heard the word of God in these last 3-4 days.
इन गए 3 or 4 दिनों में आपने परमेश्वर के वचन को सुना है.
There are 2 ways you can live the Christian life from today onwards.
आज से 2 तरीके हैं. जिस प्रकार से आप अपना मसीह जीवन जी सकते हैं
And I want to symbolize that by 2 words, minimum or maximum.
और इस 2 तरीकों को मैं 2 शब्दों के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ एक है कम से कम जो मिनिमम और एक है मैक्सिमम या सबसे ज्यादा
यू कैन से व्हाट इज द मिनिमम आई हैव टू डू फॉर द लॉर्ड टू गेट टू हेवन
आप कहोगे मैं कम से कम कौन सी वो बात करूँ ताकि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं और स्वर्ग जा सकूं
Okay, just ask Jesus to come into your heart.
सबसे कम से कम बात या कम से थोड़ी सी बात जो आप कर सकते हैं स्वर्ग जाने के लिए अब ये है यीशु मेरे दिल में आ जाइए
That's all.
खत्म
Turn from your sins, say, Lord, come into my heart.
आप अपने पापों से क्षमा मांग लोगे प्रभु मेरे हृदय में आ जा
Or you can say,
या दूसरी बात आप जो कह सकते
हैं I have only one life.
प्रभु मेरे पास एक जीवन है
So many years of that life is already over.
इतने साल मेरे जीवन के पहले से खत्म हो चुके हैं.
What is the maximum I can do for God before I leave this earth?
ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ इससे पहले कि मेरी आँखें इस धरती पर बंद हो जाएं?
That's the type of person who's going to accomplish something for God.
ये वो आदमी होगा जो परमेश्वर के लिए कुछ काम कर जाएगा.
What type are you?
आप कौन से प्रकार के आदमी हो?
Maximum or minimum? Which are you?
ज़्यादा या कम वाले?
Lord of Christians.
बहुत सारे मसीह
दे आर दिस मिनिमम टाइप व्हाट इज द मिनिमम आई हैव टू डू टू गो टू हेवन
वो थोड़ा सोचने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मैं कम से कम क्या करूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं
इन 1,000 years दे विल नेवर डू एनीथिंग फॉर गॉड
हजारों साल बीतने के बाद भी वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे
बट गिव मी वन ऑफ दीस मैक्सिमम पीपल
पर आप देखिए वो व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं
इन 6 months दे विल टर्न प्लेसेस अपसाइड डाउन
6 महीने में वो देशों को वो जगहों को उलट पुलट कर देंगे
Trust God, my brothers, sister.
मेरे भाइयों बहनों परमेश्वर पे भरोसा कीजिए.
You can live a life which is where you'll have no regret in eternity.
आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसका दुख आपको अनंत जीवन में ना हो.
Let's bow before God.
आइए परमेश्वर के सामने झुकें.
Let's bow our heads before the Lord today.
आइए अपने सिरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं.
Your responsibility has increased tremendously after you have heard the word of the Lord in these days.
इन दिनों में जब परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, आपकी जिम्मेदारी बाहर रीति से बढ़ गई है.
And the possibility of what God can accomplish through you has increased tremendously after what you have heard.
और इसके बाद जो आपने वचन जो सुना है, परमेश्वर आपके जीवन में जो कर सकता है, इसकी संभावना भी बहुत बढ़ गई है.
Say, Lord, I repent of all my laziness.
कहे प्रभु से प्रभु मैं अपने सारे आलसीपन से क्षमा मांगता
हूँ. All my half-heartedness.
मेरे आधे दिल से काम करने से मैं माफी मांगता हूँ.
All my casual attitude to sin.
पाप को हल्का समझकर पाप करने के इस स्वभाव से मैं क्षमा मांगता हूँ
All the worldliness in my life.
मेरे जीवन में जो सारी संसार की बातों को करने से मैं क्षमा मांगता हूँ
Lord, I'm sorry I mingled with half-hearted believers and become half-hearted like them.
प्रभु मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आधे हृदय से तेरे पीछे चलने वाले लोगों के साथ मिलकर आधे हृदय से तेरे पीछे चलता आया हूँ
I want to mingle with whole-hearted believers from now on.
प्रभु अब से मैं पूरे दिल से तेरा पीछा करना चाहता हूँ
I want my life to change from today.
प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज से मेरा जीवन बदल जाए.
I want to live for God.
प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ.
Christ is coming soon.
मसीह जल्दी आने वाला है.
I don't want to waste my life.
प्रभु मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ.
Respond to Him.
उसको उत्तर दे.
Say, Lord Jesus.
कहे प्रभु यीशु.
I yield my life to You.
मैं अपना जीवन आपको देता हूँ.
I want to live for You.
मैं आपके लिए जीना चाहता
हूँ. Totally.
संपूर्ण रीति से
I'd like to pray for you.
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ
Will you raise your hand and say, pray for me, brother Zach?
आप कह सकते हैं कि अपने हाथों को उठाकर भाई जैक मेरे लिए प्रार्थना कीजिए
Close your eyes, let God see that hand.
अपने आंखों को बंद करें परमेश्वर को उन हाथों को देखने दें जो आप उठा रहे हो
Heavenly Father.
स्वर्गीय पिता
You have seen these people who have responded to the call today.
प्रभु आप उन लोगों को देख रहे हो जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं आपके उत्तर को देते हुए.
Honor them.
उन्हें आदर दीजिए प्रभु.
They have not been ashamed to acknowledge their need.
प्रभु उनको लज्जा नहीं आती है ये कबूल करते हुए कि वे कमजोर हैं.
Lord, meet with them.
प्रभु आप उनके साथ रहे.
Fill them with the Holy Spirit.
तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए.
Show them Jesus as their example.
उन्हें दिखाइए कि प्रभु यीशु मसीह उनका उदाहरण है.
And I pray that their lives will change from today.
और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनका जीवन आज से बदल जाए.
Make them a blessing to many.
बहुत लोगों के लिए इनको आशीष बना.
We pray in Jesus' name.
हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से.
Please put down your hands. Thank you.
कृपया हाथ नीचे करें. धन्यवाद.
God bless you all.
प्रभु आप सबको आशीष करें.
Thank you for coming and thank you for listening so patiently.
धन्यवाद आने के लिए और इतने धीरज के साथ सुनने के लिए.
God bless you and make you a blessing.
प्रभु आपको आशीष दे और आपके लिए आशीष बनाए.